शांति, गुड इवनिंग। तो थर्ड यूनिट, सेकेंड बुक में थर्ड यूनिट, रेस्टोरिंग एंड हीलिंग रिलेशनशिप्स। तो इस यूनिट में ज्यादातर यही बताया गया है कि हमको आखिर किससे अपना संबंध जोड़ना है। व्यक्तियों से हमने संबंध जोड़ के देखा, क्या मिला अंत में, क्या मिला। कितना भी अच्छा गहरा किसी से भी हमारा रिलेशनशिप हो, कितने भी अच्छे दो फ्रेंड्स हैं, पति पत्नी है, भाई बहन है, कोलीग्स है, कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप आपस में दो व्यक्तियों के बीच में होता है, तो कभी न कभी उस रिश्ते से हमको दुख मिलता ही है। ऐसा ही है ना? ऐसा बहुत गहरी रिश्ता होती है, रिलेशनशिप होती है, लेकिन कोई ना कोई बात में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आती है ना। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं होगा जहां बोल सके कि किसी कोई दो व्यक्तियों के बीच में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना आया होगा। इसीलिए एक छोटा सा जोक सुनाते हैं। शादी करने से पहले वो भाई अपने शादी करने वाले लड़की से कहता है कि मैं आपके लिए तारे चांद सितारों को भी ला सकता हूँ नीचे। शादी करने के बाद वही नेक्स्ट रोड पर सब्जी की दुकान होती है, सब्जी भी लेके आने के लिए मना करता है। मतलब रिश्ते जो है, कोई आज कोई भी व्यक्ति के साथ आज हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप है, लेकिन कल क्या हो सकता है इस पर हमको भरोसा नहीं है। फिर भी हमको कोई ना कोई सहारा चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा बताया गया है कि हमको आदत क्या है, जो हम देखते हैं उसको हम विश्वास करते हैं। इसको देखा, हाँ लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हाँ इसको मैंने मान लिया कि दिस इज ए कंप्यूटर। बुक को देखा, कोई भी व्यक्ति को देखा, वस्तु को देखा, जिस चीज को मैं देख रही हूँ आंखों से उसको विश्वास करना हमारे लिए सहज हो गया है। सीइंग इज बिलीविंग। तो लेकिन परमात्मा को ना हम देख सकते हैं इन आंखों से, तो हम जानते हैं कितने सालों से हम बाबा के साथ है, अनुभव कर रहे हैं। तो उस जैसे बाबा ने एक दो दिन पहले मुरली में भी कहा था कि मैं जो हूँ विचित्र हूँ, मुझे कोई अपना चित्र नहीं है, इसलिए मुझे याद करना, मुझे साथ रखे चलना, मेरे साथ संबंध निभाना आप लोगों के लिए मुश्किल तो होता ही है। देखिए, रिस्टोरिंग एंड हीलिंग रिलेशन, हील करना माना क्या है, कुछ ऊंड हुआ है, देखिए कहीं हमको घाव हुआ है उसको हम ठीक करते हैं, ऑइंटमेंट लगाएंगे, बैंडेज लगाएंगे, उससे वो हील हो जाता है। ऐसे ही हम अपने मन को ऊंड कर चुके हैं, वो घाव हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अनेक व्यक्तियों के देहधारी बॉडीली रिलेशनशिप से हम कभी न कभी दुख का अनुभव करते हैं, धोखे खा जाते हैं। इसीलिए मन जो है हमारा घाव, मतलब ऊंडेड, इट्स ऑलरेडी ऊंडेड। तो उसको कैसे हील किया जाए, कैसे मन जो दुखी है उसको सुख का अनुभव किया जाए। जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है, मुरली के रोज के मुरली में अंत में एक प्रैक्टिस करने के लिए स्लोगन टाइप का दिया जा रहा है। आज का क्या था, किसी को याद है लास्ट में क्या था? हाँ, कैसे समझ जाना। लेकिन उसमें बहुत अच्छा बाबा ने एक बोला है कि मैं आपको सुख नहीं देता हूँ, सुख के खजाने के भंडारे के मालिक बना देता हूँ। तो इतना परमात्मा का प्यार हम बच्चों के लिए, बाबा जैसे प्यार का सागर है, इतना हम अनुभव कर रहे हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, हाँ, हमको बाबा मदद नहीं करता है, बाबा हमको साथ नहीं देता है, बाबा से मैं शक्ति नहीं ले पा रही हूँ, पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। क्यों क्यों ऐसा होता है? कहीं न कहीं हमारे ही पुरुषार्थ में कमी होती है, कहीं न कहीं हम ही पुरुषार्थ श्रीमत के विरुद्ध कहाँ न कहाँ चल रहे होते हैं। बाबा जो कहते हैं उसके विरुद्ध कहाँ न कहाँ, बाबा तो कहते हैं मुझे छोड़ के अब किसी को याद ही नहीं करो, लेकिन सारा दिन हमारा मन बुद्धि व्यक्तियों के साथ वस्तुओं के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है केवल एक बाबा को याद करना। तो इसीलिए इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे अनेक अलग अलग संबंधों से हम परमात्मा से रिश्ते को जोड़ सकते हैं, कैसे उसको मात पिता बंधु सखा सदगुरु, जैसे हमने ही गाया है तुम ही माता हो पिता हो सखा हो सदगुरु हो बंधु हो सब कुछ तुम ही हो, हमने ही गाया हुआ है, कैसे उसको साथ लेकर के चले उस आधार पर ही ये चैप्टर बनाया गया है। तो जैसे अब डिस्कस हम कर रहे थे कि सीइंग इज बिलीविंग, जो मैं देखती हूँ उसी पर मुझे विश्वास होता है। परमात्मा दिखाई ना देने के कारण कभी कभी हम उनसे मदद ना ले पाते हैं और उस समय लगता है हमारा कौन है, हमारा सुनने वाला कौन है, हमको देखने वाला कौन है। इसीलिए क्वेश्चन नेचुरली बाहर वालों के लिए तो आता है इज गॉड रियल। देखिए दुनिया में भक्ति करने वालों की बात तो अलग है, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा पर बिल्कुल नहीं, जिसे नास्तिक कहा जाता है, परमात्मा है ही नहीं ऐसे विश्वास रख के चलने वाले भी दुनिया में बहुत लोग हैं। तो इसीलिए उनको नेचुरली क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इज गॉड रियल, सच में परमात्मा है क्या, सच में परमात्मा की बातें जो आप करते हो वो सबको प्रैक्टिकल में लाना पॉसिबल है, कई सारे क्वेश्चंस उनके मन में आ जाते हैं। लेकिन देखिए वो ही एक ही परमात्मा है जिसके साथ हम सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। देखिए अगर अलौकिक में पिताजी है उनके साथ एक ही पिताजी का ही रिलेशनशिप हम निभा सकते हैं, लेकिन परमात्मा इज द ओनली वन विथ हुम वी कैन एक्सपीरियंस ऑल द रिलेशनशिप्स, जो भी संबंध जिस संबंध में हमको वो उसका साथ का अनुभव चाहिए वो ही संबंध में उन सभी संबंधों में हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, और वो हमेशा हमारा साथ है, हमेशा हमारा मददगार है। जैसे डैम में जैसे वाटर को स्टोर करते हैं ना, ऐसे ही हम अपने आत्मा में उसके शक्तियों को गुणों को भर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा गॉड जैसे हम कहा जाए वो तो दाता है, सभी गुणों का शक्तियों का सागर है, उसका काम ही है देते जाना देते जाना, लेकिन जितना हम लेते हैं जितना उसको कार्य में लगाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट। तो इसी आधार पर ये चैप्टर में दिया गया है। तो इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमको परमात्मा के साथ अलग अलग फ्रेंडशिप्स कौन से है उसको जानने को मिलेगी, कैसे सभी संबंध हम एक के साथ जोड़ सकते हैं उसके बारे में भी दिया गया है, और क्यों रिलेशनल एरर्स क्यों होते हैं, जैसे कुछ लिखते हैं गलतियां हो जाती है ऐसे ही संबंधों में भी गलतियां हो जाती है, इसका कारण क्यों है। जैसे इस चैप्टर में एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि अलग अलग रिलेशनशिप के बारे में, बहुत इजी है इस चैप्टर। वैसे हम बाबा के बच्चों के लिए तो बहुत ही इजी है, रोज हम जो मुरलियों में सुनते हैं उसी के आधार पर ये चैप्टर बनाया गया है। और कॉमन रिलेशनल एरर कौन से है ऐसा भी प्रश्न आ सकता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो, नहीं तो इसमें जैसे जानने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे अलग अलग रिलेशनशिप में कैसे उसके साथ संबंध जोड़े उसके बारे में भी अलग अलग प्रकार के कॉमेंट्रीज दी गई है, वो भी हम देखेंगे। तो ऑल रिलेशंस 3.3 में है, ऑल रिलेशंस विथ वन, एक के साथ सभी संबंध, कौन से है वो संबंध, फादर टीचर रिसेप्टर फ्रेंड ब्रदर सिस्टर मदर एंड कंपेनियन, वो पिता है जैसे हम कहते हैं तो वो हमारा पिता है, टीचर है, सतगुरु है, रिसेप्टर का मतलब सतगुरु, वो हमारा फ्रेंड भी है, भाई भी है, बहन भी है, मदर भी है, कंपेनियन भी है, साथी जिसको कहते हैं ना, जो फ्रेंड और कंपेनियन में अलग अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ घूम लिया फिर लिया थोड़ा एंजॉय कर लिया रह जाए, कंपेनियन का मतलब है जो हमारा सदा साथ निभाए, जो हमारे मुश्किल के टाइम में जब हमको परिस्थिति है, ऐसे कोई व्यक्ति सदा साथ निभा सकता है कितना भी उनके साथ हमारा गहरा रिलेशनशिप हो, निभा सकता है। क्या होता है जब हम रिलेशनशिप किसी के साथ रखते हैं वो हेल्थी रिलेशनशिप कब हो सकता है? प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में क्यों आते, कब आते? एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन भी कि हम क्यों रखते हैं, सबके साथ तो हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है ना। कोई कोई ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनसे ही हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए कुछ करे, वो हमारे लिए कुछ कहे, हमारे साथ टाइम बिताए, हमारे से बातें करे, ये सब हम एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं? अटैचमेंट। देखिए, कोई भी न्यारा और प्यारा, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया, कोई भी व्यक्ति के साथ अगर हमारे रिलेशनशिप न्यारा प्यारा का है तो ही वो रिलेशनशिप हेल्थी रह सकता है। जैसे कहा जाए, इसमें महाभारत में एक सीन आती है, द्रौपदी का जब वस्त्र को उतारने का जो सीन आता है ना, उसमें पहले वो अपने पांचों पतियों की सहायता के लिए पुकारती है, आप आओ मेरे, मुझे मदद करो, आप आओ। सभा में जितने भी व्यक्ति बैठे हुए होते हैं ना, सबकी मदद के लिए वो बुलाती है, आप आके मुझे मदद करो, आप आके मदद करो, आप आके मदद करो। अंत में किसको याद करती है? वो श्री कृष्ण को याद करते। तो श्री कृष्ण, उनका जवाब क्या है मालूम है आपको? पहले सभी देहधारियों को पुकारा, अंत में मुझे याद किया। तो जब हम भी सभी देहधारियों की जो हमारा संबंध है उसको छोड़ के एक बाबा को पकड़ेंगे, एक परमात्मा को पुकारेंगे, तब ही वो हमको मदद करता है। उस बाबा का एक ही तो कंडीशन है ना, अदरवाइज बाबा तो हमारे ऊपर कुर्बान है। एक ही कंडीशन क्या है? सभी संबंधों को जोड़ो, मेरे से संबंध जोड़ो। लेकिन यही तो बहुत मुश्किल की बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है, जो संबंध आपको चाहिए परमात्मा के साथ, वो सारे संबंध उनसे हम जोड़ सकते हैं, निभा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम उस परमात्मा से संबंध जोड़ते जाएंगे, हमको अष्ट शक्तियों का अनुभव होता जाता है, गुणों का अनुभव होता जाता है। इसके लिए जैसे सभी संबंधों का हमको अनुभव करना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एक वीक में एक बार हमको साइलेंस ऑब्जर्व करना है। जैसे हर एक वीक में मुझे कोई ना कोई संबंध उसके साथ अनुभव करना है, नहीं करते हम। लेकिन जितना संगम युग में ईश्वर के साथ एंजॉय करना है, जितना उसके प्यार के शक्तियों का हमको अनुभव करना है, हम नहीं कर रहे। इसीलिए यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार एक संबंध मुझे उसके साथ अनुभव करना है। एक हफ्ता माता के साथ अनुभव, एक हफ्ता पिता, फ्रेंड का, कंपेनियन, सखा, सदगुरु, जो संबंध की मुझे महसूस कमी महसूस हो रही है। अगर मुझे लगता है कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरे भावनाओं को, मेरे प्रॉब्लम्स को सुनने वाला नहीं है, तो उस समय हम एक फ्रेंड, ऐसे हुआ बाबा, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, जो भी हम के हमारे मन में बातें हैं उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हफ्ते में एक बार आप साइलेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो कोई ना कोई संबंध का अनुभव आप जरूर कर सकते हैं। साथ में ये भी दिया गया है कि ए लेटर टू गॉड इन द सेलेक्टेड मेडिटेशन ड्यूरिंग द डे। बाबा भी यही बोलते हैं कि बच्चे मुझे अपना खबर नहीं देते हैं, बीच बीच में चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इसलिए उस समय बाबा क्या समझेंगे, मेरा बच्चा तो मर गया, गुम्मी हो गया है। तो कभी बीच बीच में कोई ना कोई अलग अलग संबंध लेके परमात्मा को हम चिट्ठी लिखेंगे तो और भी गहराई में, अभी हम लिखेंगे कुछ ना कुछ बाबा भी रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हमको और निश्चय आता जाता है, निश्चय आता जाता। जितना हम बाबा से शक्ति लेंगे, जितना उनकी मदद लेके आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना निश्चय आता जाता है। अगर हम ट्राई नहीं कर रहे, बाबा को यूज ही नहीं कर रहे, तो न शक्ति ले पाएंगे, ना उसको अनुभव कर पाएंगे, और निश्चय नहीं आएगा। ना कर ही नहीं रहे, शक्ति ले ही नहीं रहे, उनकी मदद हम नहीं ले रहे, तो वो जो अनुभव हमको करना है वो नहीं कर पाते। इसीलिए हफ्ते में एक बार साइलेंस का और लेटर लिखने की भी बात यहाँ पे बताया गया है। तो अलग अलग संबंध के बारे में, जो जो संबंध जैसे अभी देखा ना हमने, उन संबंध के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिया गया है। पहला है वो हमारा पिता है, जैसे आत्मा का पिता परमात्मा है, वही पहला संबंध है। जैसे मैं जब ज्ञान में आई तो हमको लौकिक पिताजी नहीं थे, यही पॉइंट से ही मैं ज्ञान में चली। इतना अच्छा लगा, वो लौकिक पिताजी तो छोड़ के कभी भी चले जाएंगे, लेकिन परमात्मा हमारा पिता है, ये पिता तो कभी भी हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये संबंध जो है नंबर वन है। ऐसे हम जब किसी को बाबा का परिचय देते हुए भी यही कहते हैं ना, क्या सब पहले कहते हैं, आत्मा का, आप आत्मा हो और आपका पिता परमात्मा है। इसीलिए यहाँ पर भी गॉड अवर फादर, परमात्मा हमारा पिता है, ये संबंध के बारे में ही पहले दिया गया है। जैसे यहाँ पे एज ए फादर, पिता के रूप में बाबा परमात्मा हमारे लिए क्या क्या करते हैं, वो हमारा भाग्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, कोई पानी के ऊपर सूरज की किरणें गिरेंगे तो कैसे दिखता है, गोल्डन कलर दिखता है ना, ऐसे कुछ चमक रहा है। ऐसे ही हमारा भाग्य सोया हुआ था, उसमें कुछ कोई भी अच्छा रखा ही नहीं था, सब हमने अपने भाग्य को कम्प्लीटली गवा चुके थे। अभी परमात्मा पिता के रूप में उस भाग्य को फिर से चमका रहे हैं, पहले जगाया फिर उसी भाग्य को परमात्मा फिर से जगा रहे, जैसे पानी के ऊपर सूरज की किरणें जैसे गिरते हैं ऐसे चमकने लगते हैं, ऐसे अभी सभी हम चमक रहे हैं। और एज ए फादर क्या करते हैं, बाबा सब जो बोलना है बोलते हैं, फिर पीछे हट करके देखते हैं कि हम बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो बाबा ने बोला उसको अच्छी तरह हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये सब बातों को पीछे रह के एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा हो के बाबा देखते हैं। यहाँ बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया है कि ही इज अन इमोशनल बिकॉज दैट्स अ क्वालिटी ऑफ एन एक्सपर्ट पेरेंट्स। बाबा इमोशन में आते हैं क्या, अगर हम रोएंगे बाबा मुझे मदद करो, बाबा करेगा, कभी नहीं करेगा और ही नहीं करेगा। अगर हम हिम्मत से फेस करके आगे बढ़ रहे तो बाबा का जरूर मदद करते, अगर हम रोते रहेंगे तो ही इज अन इमोशनल। किसी कोई भी इमोशन, कोई भी भावनाएं अगर हम ऐसे करेंगे तो कभी हमको, जैसे करते ना, जैसे पेरेंट्स बच्चों को सिखाना है, कुछ शिक्षा देना है, कैसे देते हैं, अगर बच्चे रो रहे तो और ही उनको मदद नहीं करते, स्ट्रांग रहते ताकि बच्चों को हम कुछ सिखा सके, कुछ शिक्षा दे सके। ऐसे ही एज ए फादर परमात्मा हमारे पिता होकर, हमारे पेरेंट होकर के अन इमोशनल है, कोई भी इमोशन में बाबा नहीं हारते हैं। बाबा कैसे बच्चों के सामने हारते हैं, कैसे बच्चों के सामने बाबा हारते हैं, हाँ जी, आपके सामने कभी बाबा हारा है, मतलब हाँ बस प्यार, प्यार से बाबा का यही डिमांड है कि प्यार से मुझे याद करो। दूसरा, जो बच्चे सच्चे हैं और पुरुषार्थी हैं, बाबा से मदद लेने का एक ही रास्ता है, पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो बाबा की मदद नहीं मिलती। अगर हम बोल रहे बाबा की मदद नहीं मिल रही है, उसका एक ही कारण है, मेरे ही पुरुषार्थ में कहाँ न कहाँ कमी है। देखिए सच में अगर थोड़ा हम डीपली गहराई में जाके सोचेंगे, बाबा हमको जितना दे रहे हैं उतना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं क्या, जो जितना हम कर रहे हैं पुरुषार्थ उससे बहुत ज्यादा वो दे रहा है हमको रिटर्न में, और हमको करना है और करना है। और दूसरी बात देखिए, हम करें ना करें उसको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, लॉस किसको होने वाला है, हमको तो लॉस होने वाला है ना। इसीलिए ही इज अन इमोशनल, कोई भी इमोशन में वो झुकेंगे नहीं। वो कहते हैं ऑलवेज चिल्ड्रन ऑलवेज बी केयरफुल, बच्चे संभाल के चलो। नेक्स्ट गॉड अवर मदर, परमात्मा हमारे मदर के रूप में कैसे निभाते हैं। तो बताया गया है कि वो जो संबंध है परमात्मा के साथ, मदर का जो संबंध है वो शब्दों में नहीं बताया जाता है। जैसे माँ कैसे बच्चों को पालना देती है, ऐसे ही वो हमको पालना देते और उनको कोई भी शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। इतना प्यार हमको करता है कि वो, जैसे बाबा कितना हमको पालना देता है, कोई प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या कहते हैं, वो भी कहते और बोलते ना, कोई शब्द में उसको वर्णन नहीं किया जाता है। खुद भी आप जब अनुभव करेंगे, इसे ही अगर मैं एक जलेबी खा के आपको बताऊं जलेबी इतनी अच्छी थी उतनी अच्छी थी, अनुभव होगा, नहीं हो सकता है ना। जब हम उस जलेबी को खाएंगे तभी अनुभव हो सकता है। ऐसे ही जो एज ए मदर जो परमात्मा हमको पालना देते हैं, प्यार करते हैं, वो संबंध कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो अपने हमको देखते हैं, वो एज ए मदर परमात्मा हमको कहते हैं गो इनवर्ड, अपने आप में जाओ, अंदर की जो जर्नी है, इंटरनल जर्नी है, इनर जर्नी जो है उसको करो, अपने गुण शक्तियों को ढूंढ के बाहर निकालो, उसको कर्म में लगाओ, ये सब शिक्षाएं भी देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा घर है, ऐसे तो एज ए प्रेसिप्टर बाबा सतगुरु के रूप में वो हमको घर का मार्ग बताते, लेकिन यहाँ पे बताया है कि वापस उस घर के जो परंधाम में जो साइलेंस है, उस घर के अनुभव में वो हमको ले जाते हैं, ये भी दिया है। बाकी शी सेज नेवर क्राई, तो अगर बाबा हमको कह रहे कि मत रोवो, तो कौन से संबंध में कह रहे हैं, कौन से संबंध में, माँ के संबंध में कहते हैं कि आप कभी भी रोवो मत। नेक्स्ट है गॉड अवर टीचर। देखिए एज ए टीचर परमात्मा हमारे मन में जो मिसकॉन्सेप्शंस है, जो गलतियां है, जैसे परमात्मा के बारे में, ड्रामा के बारे में, आत्मा के ज्ञान के बारे में, समय के बारे में, कर्म के बारे में, कितना भी कोई भी लौकिक की पढ़ाई की हो, लेकिन अगर उसको ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए एज ए टीचर हमारे मन में जो भी मिसकॉन्सेप्शंस है, क्योंकि दिस इज एन एज ऑफ फुल ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस, जहां भी जाएंगे हमको गलत इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, बहुत मत मतांतर है, जिसको जो मुंह में आया, जिसको जो ठीक लगा वही बोलते रहते। इसलिए एज ए टीचर, टीचर का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे जो गलत कर रहे हैं उसको करेक्ट करना। तो एज ए टीचर जो भी हमारे मन में गलत भावनाएं हैं, जो भी हमारे मन में गलत नॉलेज, हम मिसकॉन्सेप्शन लेके बैठे हैं, सबको क्लियर करते। पहला मिसकॉन्सेप्शन क्या था हम हमारे में, हम अपने को, वो भी भगवान के बारे में बात किया जाए तो कण कण में परमात्मा है, अपने बारे में बात करेंगे तो हम अपने को आचार्य समझते थे। इसीलिए जो भी मिसकॉन्सेप्शंस थे सबको क्लियर कर देते हैं, वो हम जैसे कांस्टेंट रिदम ऑफ इन्फॉर्मेशन मूविंग थ्रू अस, बाबा जैसे ज्ञान का सागर है, जितना ज्ञान उनमें है सारे हम में भरना है, यही बाबा का लक्ष्य होता है। इसे कांस्टेंट रिदम, कंटिन्यू बोलते रहते ज्ञान हम में ज्ञान भरते रहते हैं। तो वो एज ए टीचर वो हमको मार्ग भी दिखाते हैं, इस रास्ते में चलना है, इस रास्ते में नहीं चलना। मुरली क्या है, बाबा जब मुरली रोज हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तो माता पिता टीचर जो सभी संबंध जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वे उन सभी संबंधों में पालना देते हैं। पिता के रूप में भी पालना देंगे, माता के रूप में भी पालना देंगे, टीचर के रूप में भी देंगे, जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा चार हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का भी एक मुरली में ही सब कुछ कवर हो जाता है। ऐसे ही देखिए ये रास्ता है, इस पर आपको चलना है, ये रास्ता है, इस पर आपको नहीं चलना है, ऐसे सभी नॉलेज एज ए टीचर वो हमको दे देते हैं। तो बाबा ये भी हमको बताते, ये करके देखो जीवन आपका कितना सफल बन जाएगा, ये करके देखो, ये पुरुषार्थ करके देखो जीवन में आपकी कितनी उन्नति आ जाएगी, एज ए टीचर इन सभी बातों का ज्ञान हमको देते हैं। सतगुरु, सतगुरु में इंग्लिश प्रिसेप्टर भी कहा जाता है, जैसे सतगुरु का काम है वापस हमको ले जाना, वापस जिस घर के रास्ते को हम भूल चुके थे उस घर के रास्ते को दिखाना सतगुरु का काम है। एज ए सतगुरु परमात्मा, एज ए प्रिसेप्टर हमको ही गिव्स द विंग्स टू फ्लाई। जैसे घर कैसे जाएंगे हम, जब वापस जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उड़ के जाएंगे ना, एक सेकेंड में बस उस घर को हम पहुंच जाएंगे। सो एज ए सतगुरु ही गिव्स द विंग्स टू फ्लाई सो दैट वी कैन फ्लाई एंड रीच अवर होम। परमात्मा हमको अभी तो अभी कौन से विंग्स दी हुई है, कौन सा विंग्स है अभी, उमंग उत्साह, बाबा बोलते हैं ना उमंग उत्साह के अभी आप विंग्स को पहन के उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ऐसे ही जब पूरा हमारा पाठ पूरा हो जाएगा उस समय सतगुरु, एज ए सतगुरु बाबा हमको वापस घर ले जाएंगे, विंग्स देंगे उस समय, वही सतगुरु का काम है। हाँ जब अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट है, शरीर की प्रॉब्लम है, व्यक्ति उनसे प्रॉब्लम है, संबंधों का प्रॉब्लम है, अंत में क्या होने वाला है, अंत में बहुत और प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम्स विल बी पैक्ड, जो भी हमारे समस्याएं हैं सब पैक करके पीस इज एक्सपीरियंस्ड, सभी प्रॉब्लम्स सब बाबा पैक कर देंगे और गहरी शांति जिसके लिए अभी हम तड़प रहे हैं, गहरी शांति का अनुभव करा के परमात्मा हमको वापस ले जाएंगे। यही परमात्मा का प्रॉमिस है। मैं आया हूँ आपको घर का रास्ता बताने के लिए, घर का रास्ता बता के घर वापस ले जाना, दिस इज माई प्रॉमिस। आपको जाते जाते यहाँ पे दिया है कि गहरी शांति का अनुभव करा के ही मैं आपको ले जाऊंगा। ये सतगुरु के रूप में बाबा हमारी सेवा करते हैं। नेक्स्ट डे बहुत इम्पोर्टेंट, गॉड अवर बिलवेड, परमात्मा हमारा बिलवेड मतलब जिसके साथ हम प्यार का रिश्ता निभाते हैं। जैसे अभी जनवरी मास में यही सब मेन पॉइंट्स दिया जाता है कि प्यार कैसे हम बाबा के साथ अनुभव करें, कैसे उस परमात्मा के साथ गहरा प्यार का अनुभव करें। नहीं तो क्या होता है, कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छी तरह बात नहीं की हमको फील हो जाता है, हर्ट हो जाती है, क्योंकि हम उस समय परमात्मा के प्यार को भूल जाते हैं, व्यक्ति से हमारे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए उस परमात्मा के प्यार में कैसे खो जाएं, जब उसको ही हम अपना सर्व संबंधी सखा सद्गुरु मानते हैं, उसको ही उसी जैसे परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो प्यार का सागर है, तो एज ए बिलवेड वो हमको बहुत ही प्यार देते हैं ताकि सारी दुनिया को हम भूल जाएं। क्योंकि जितना जितना इस दुनिया को, पुरानी दुनिया को हम याद रखेंगे, याद करते रहेंगे, उतना हमको और ही दुख का ही अनुभव होता जाता है। तो इसीलिए इतना प्यार हमको बाबा देते हैं, इतना प्यार देते हैं हम जैसे भी है जो भी है, इसलिए बाबा कहते लास्ट बच्चे से भी मुझे उतना ही प्यार है। ऐसे कोई अच्छे पुरुषार्थी है उनको मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, पुरुषार्थी नहीं है कम प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं। तो लास्ट बच्चा हो जो भी हो, इतना ही मुझे उससे प्यार है, सबके लिए बाबा का प्यार इक्वल है। इसीलिए वो इतना प्यार वो हमको करते हैं, देते हैं, ताकि उसके प्यार में हम खो जाए और सभी दूसरे संबंधों का, इस पुरानी दुनिया से जो हमारा प्यार है, आकर्षण है, संबंध है, लगाव है, झुकाव है, सब कुछ हम भूल सके, जैसे अपने आप में अंदर जाने की वो हमको मदद करता है। जैसे अंतर्मुखता और बाहर मुखता दो चीज है, जब हम बाहर मुक्ता में आते हैं तो बाहर के आकर्षण में आ जाते, लेकिन ही हेल्प्स अस टू टर्न इनवर्ड टोटली, अपने ही अंदर में जाने के लिए वो हमको मदद करता है, ताकि अपने ही अंदर जितना जाते जाएंगे, जितना जाते जाएंगे गहराई में आत्मा समझ सकेंगे, तभी उस परमात्मा को हम याद कर सकेंगे जो प्यार का सागर है। जब बाहर आउट हमारी जर्नी आउटर हो जाती है, बाहर मुक्ता में जब हम एक्स्ट्रोवर्ट जब हम हो जाते हैं तो बाहर के आकर्षण में आ जाते, इसलिए हेल्प्स अस टू टर्न इनवर्ड टोटली, कंप्लीटली अंदर अपने आप में जाके उसको याद कर सके, ये हेल्प हमको करते हैं। नेक्स्ट है गॉड अवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को क्या कहते हिंदी में, दादा। दादा के संबंध में क्या करते हैं, वो जैसे एक ट्री है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि वो जैसे एक बहुत स्ट्रांग जो वृक्ष होता है ना, वो जैसे है, इतना स्ट्रांग वो स्टैंड हो जाते हैं, इतना स्ट्रांग वो स्टैंड हो जाते हैं, ताकि हमको भी एज ए ग्रैंडफादर उस संबंध में पालना दे सके। डीप रूटेड जो ट्री होता है ना, वो कभी हिलेगा नहीं, ऐसे ही वो इतना स्ट्रांगली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका संबंध जुड़ गया है, ताकि वो हमको उस संबंध में पालना दे सके। और दूसरा यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है कि वो हमारे नाम को नहीं जानते। शुभाबा को सबका नाम मालूम है, तो जैसे बाबा भी यही बोलते हैं ना, सबके नाम और विशेषता के साथ मैं याद प्यार देता हूँ, लेकिन जैसे साकार में दादिया कहती है ब्रह्म बाबा को सबके नाम मालूम नहीं थे, कोई कोई किसी किसी के नाम ही बाबा याद रखते थे। तो लेकिन एज ए ग्रैंडफादर यहाँ पे बताया गया है कि वो हमारे नाम नहीं जानते, मतलब सबके नाम बाबा याद नहीं रखते, बाबा हमको जानते, ऐसे नहीं बाबा हमको एक एक आत्मा को नहीं जानते, बाबा जानते, लेकिन इतने लाखों का नाम कैसे याद रख सकता है कोई? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए वो हमको हमारे नाम से नहीं पहचानते हैं, लेकिन हाँ वो भी सही बात है। नाम जो है शरीर को है, आत्मा का तो कोई नाम नहीं है। जब बाबा हमको देखते कैसे देखते होंगे, कैसे देखते बाबा जब हमको देखते? देखिए, जब बाबा किसी का नाम बोलता है तो वो तो शरीर को देखे बोलेगा ना, कैसे बोलेगा फिर? देखिए ये सब कितनी गहरी गहरी बातें है ना, हमको कितना और भी जानना है। किसी के जैसे कोई दादी उनका बाबा नाम लेता है तो क्या देखे लेता है? आत्मा को तो नाम नहीं है ना फिर, यानी मीठे बच्चे ठीक है, लेकिन किसी किसी के अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते कोई कोई का नाम लेते हैं ना तो कैसे लेते? तो शरीर को तो देखे ले, शरीर को तो या तो उस समय शायद मतलब हाँ विशेषता है तो आत्मा के है ना फिर, इसीलिए क्या कहे अभी, मतलब आत्मा को ही देखेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा भी होते हैं, ब्रह्मा बाबा भी तो किसी न किसी को तो पहचानते हैं ना, साकार के रूप में भी उस हिसाब से नाम लेते होंगे, लेकिन ऐसे कोई पर्टिकुलरली नाम से बाबा हमको नहीं देखते हैं या वरदान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब बात उनसे बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे सबको बाबा पालना देते हैं, बाबा की जो पालना है हर, जैसे एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन नहीं है, यही होता है ना। जो मुरली दादियों के लिए 40-50 साल वालों के लिए है वही मुरली, एक दिन का भी बच्चा हो उसी के लिए भी वही मुरली कॉमन चलती है। ऐसे ही एज ए ग्रैंड फादर वो हमको पालना देते हैं, भले हमारा नाम वो नहीं जानते होंगे, भले हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका काम है पालना देना, ऐसे वो देते हैं। नेक्स्ट है गॉड अवर चाइल्ड, परमात्मा हमारा बच्चा। तो ये हमको क्यों चाहिए इस संबंध में? कोई याद करते हैं इस संबंध में बाबा को? माताएं कोई अगर बैठी हो तो करते हैं क्यों? क्योंकि जो हमारे लौकिक बच्चे आपके हैं वो कभी भी आपको साथ दे ना दे, कोई भी चांसेस है, लेकिन अगर हम परमात्मा को बच्चा बना दिया तो वो हमेशा हमारा साथ देगा अंत तक, जब हम चल भी नहीं सकेंगे। बहुत आत्माओं का अनुभव है, जैसे बाबा आया हमको चाय बना के पिलाए, करते वही है, लेकिन बाबा इतना ताकत दे के उनको कराता है ना। तो इसलिए एज ए चाइल्ड ही इज द प्रोटेक्टर दो द चाइल्ड। देखिए बच्चा होने के बाद भी वो हमको यूजुअली दुनिया में क्या होती है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा हमारा बच्चा होने के बाद भी वो हमको हेल्प करता है, साथ देता है। इतना यहाँ पे बताया गया है कि इतना वो हमसे हमको मदद करते ताकि साथ में हम कोई भी परिस्थिति को निभा सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली वॉक थ्रू द फायर, आग में भी हम जा सकते हैं, ऐसे एक एग्जांपल दे। इसका मतलब क्या है? अगर उसको हम अपने बच्चा बना के साथ लेके चले तो जैसे बहुत बुजुर्ग होते हैं, बहुत बूढ़े लोग होते हैं जो चल भी नहीं सकते, उनको कोई ना कोई किसी न किसी का साथ तो चाहिए चाहिए, उस समय वो परमात्मा को बच्चा बन करके चल सकते हैं ताकि कोई भी परिस्थिति को वो पार करके आगे बढ़ सकते हैं। टू फील एज द गॉड इज अवर चाइल्ड इज टू हैव हिम ऑन अवर ओन माइंड। परमात्मा को बच्चा समझने का मतलब है उसको अपना अपने दिल में बसाना, अपने मन में बसाना, अपने साथ रख करके चलना। नेक्स्ट है गॉड, हाँ ये भी तो बात है, जैसे अगर शिव बाबा को हमने बच्चा बना लिया तो हमारे जो प्रॉपर्टी है उसका वो इनहेरिटेंस उसको चली जाती, वो उसका हकदार बन जाता है, उस हिसाब से भी हम उसको अपना चाइल्ड बना सकते हैं। गॉड अवर फ्रेंड, परमात्मा को फ्रेंड। जैसे कूल विंड, अगर ठंडा हवा ठंडी हवा आ रही है तो कैसे हमको अच्छा लगता है, ऐसे ही उस संबंध में हमको शीतलता का अनुभव होता है। हाँ कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरा साथ निभा रहा है। ही पासेस ओवर व्हाट इज बिग एंड मिस्टेक इट इज स्मॉल एंड व्हाट सीम्स ओनली डिटेल। देखिए कोई भी मिस्टेक्स है वो हमको करेक्ट करके कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए भी वो हमको हेल्प करते हैं। अगर परमात्मा को हम साथ रखे चले, भले हम अकेले हैं, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी बात है, कुछ है हमारे सामने, हम अकेले हैं, लेकिन वो फ्रेंड, गॉड इज माय फ्रेंड, वो हमारे साथ है, वो मेरे साथ है, तो आगे बढ़ने में हमको हिम्मत आती जाती है। तो ये थे जैसे 8 संबंधों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग वैल्यूज विद गॉड्स रिलेशंस, जैसे कौन सा रिलेशन और कौन सा वैल्यू, एक टेबल भी बुक में दिया गया है कि अलग अलग रिलेशंस में कैसे अलग अलग वैल्यूज को कनेक्ट कर सकते हैं। लिबरेटर मतलब मुक्तिदाता, है ना, जो हमको इस पुरानी दुनिया से, पुरानी शरीर से, पुरानी संबंधों से मुक्त करके वापस ले जाते हैं। तो उसका जो कनेक्टेड वैल्यू है वो है फेथ। फेथ तो है ना कि बाबा हमको वापस ले जाएगा, पता नहीं क्या होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं लगता है ना। तो इसीलिए लिबर फेथ है, निश्चय है हमको कि पक्का वो हमको घर का रास्ता दिखा करके वापस ले जाएगा। नेक्स्ट है वॉशरमैन, मतलब जैसे बाबा बोलते हैं ना, बाबा इतना अपने आप को निर्माण बनाते हैं कि वो कहते हैं मैं तो धोबी हूं, आपके जो भी मैले हुए हैं आत्माएं उसको धुलाई करने का काम मैं कर रहा हूं। तो उस समय क्या है, पेशेंस की बात यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, इतने साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे संकल्प भी हमारे मन में चलते हैं, तो वी हैव टू बी पेशेंट। प्यूरिफायर, जैसे पतित पावन का बाबा, हम बाबा काम कर रहे हैं तो उसमें गुडविल होना चाहिए। सर्वेंट, देखिए बाबा भले हमारा सर्वेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि उन पर हमको रेस्पेक्ट ना हो, वी शुड रेस्पेक्ट हिम। लॉर्ड ऑफ द पुअर, बाबा गरीब निवास है तो वहां पर जेनरॉसिटी। इनोसेंट, ऐसे सब प्रैक्टिस करने के लिए मैं समझती हूँ ये हमको स्टडी करनी होगी, अदरवाइज तो ऐसे एक टेबल दिया है बुक में, अगर आप देखेंगे तो कैसे कैसे अलग अलग रिलेशनशिप्स में वैल्यूज को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इनोसेंट मतलब हॉनेस्टी, प्रामाणिकता। लॉर्ड ऑफ द ट्री, वृक्षपति के लिए ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, निर्माणता, नम्रता। लॉर्ड ऑफ एंजल, उसके लिए अटेंशन दिया गया है। करण करावनहार, ओबीडियंस, फेथफुलनेस। क्रिएटर, रचयिता, वहां पर भी ओबीडियंस है। डायरेक्टर, फेथ। बिजनेसमैन के लिए हॉनेस्टी, ट्रस्टीशिप। ज्वेलर, वहां पे फिर पेशेंस और कॉन्फिडेंस। गॉड ऑफ यज्ञ, ओबीडियंस, फिर फेथफुलनेस आया है। रुद्रा, प्रोटेक्शन। ऐसे कुछ रिलेशंस साथ ही साथ, ऐसे एक बार स्टडी करेंगे तो भी उस हिसाब से हमको नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट एक टॉपिक दिया गया है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे एक डिस्कशन के रूप में इसको बताया गया है कि विच ऑफ द रिलेशनशिप्स विद गॉड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। किसी को प्रश्न पूछा गया कि कौन सा संबंध आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों, कोई आके बता सकते हैं, क्योंकि एक दो पेज में सारे क्वेश्चन आंसर्स का ही दिया गया है। कोई आके बता सकते हैं कौन सा संबंध आपको अच्छा लगता है और क्यों, एक दो मिनट में, क्योंकि पूरा एक दो पेज है ना डिस्कशन है, तो हम भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। एक मिनट दो मिनट में फटाफट बोल के जाइए, यहाँ आना है।
ओम शांति। परमात्मा को हम फ्रेंड समझेंगे तो जो कुछ हमारे मन का बात है, किसी को बताने को हेजिटेशन होता है, वो क्या समझे क्या सोचे, इस तरह होता है ना, ये सभी बातें परमात्मा के साथ हम शेयर करते हैं। जो कहना चाहते अंदर का हमारा जो रहता है ना विषय, वो सभी परमात्मा के साथ फ्रेंड जैसे समझ के हम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि किसी को बताएंगे तो फ्रेंड समझ के वो दूसरों को बता सकते हैं। परमात्मा ऐसा नहीं, परमात्मा सभी सुनते हैं, हमको इसके बदले में हमको रिलैक्सेशन मिलता है।
तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया कि आपको कौन सा संबंध अच्छा लगता है, तो उसके बारे में भी अलग अलग आंसर से और अलग अलग डिस्क्रिप्शन से, जैसे किसी ने यहाँ पे आंसर दिया फादर, क्योंकि क्यों पिताजी पसंद है, क्यों पिता के रूप में बाबा पसंद है, क्योंकि उनसे हमको वर्षा मिलता है। देखिए एक सतयुग का वर्षा तो सेकेंडरी है, लेकिन संगम युग में कितना बाबा लुटाता है, कितना प्यार देता है, पालना देता है, कितना पलकों पे बिठा के हमको बाबा संभालता है ना, इसीलिए फादर, क्योंकि उनसे हमको पालना मिलती है, इनहेरिटेंस मिलती है, प्यार मिलता है। नेक्स्ट है कंपेनियन, क्योंकि कंपेनियन अगर है तो उसके साथ हम नजदीक का अनुभव कर सकते, क्लोजनेस का अनुभव कर सकते हैं, हार्ट जो भी दिल की बातें हैं उनसे हम शेयर कर सकते हैं, फ्री होके बातें कर सकते हैं, प्यार का लेन देन अनुभव कर सकते हैं, और कोई भी बैरियर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं, वो भी उनसे हम शेयर कर सकते हैं। कभी भी कोई भी समय पर कोई भी स्थान पर उनके मदद हम ले सकते हैं, उनके प्यार को भी हम अनुभव कर सकते हैं। टीचर के लिए बिकॉज वी गेट गाइडेंस एंड इनोवेटिव नॉलेज फ्रॉम हिम, क्योंकि एज ए टीचर परमात्मा हमको गाइड करते हैं, इनोवेटिव अलग अलग प्रकार के ज्ञान बाबा देते हैं। बिलवेट क्यों, वो हमको सदा सुहागिन बनाता है। जैसे लौकिक में किसी का किसी से शादी होता है, जन्म जन्म के भी हम साथी बनेंगे ये वायदा करते हैं, लेकिन क्या होता है एक जन्म में भी कम्प्लीटली। आजकल तो इतने, जैसे कोई कैलकुलेशन उस दिन गुलियानी जी सर बता रहे थे ना कि दिल्ली में, उस दिन भी हमने देखा कि यूके में एवरी थ्री मैरिजेस वन मैरिज डिवोर्स में एंड होता है, और आफ्टर 10 or 20 years वो मैरिज डिवोर्स में एंड होने की चांसेस है। ऐसे अनेक अलग अलग कैलकुलेशन रिसर्च से हमको, जैसे उस दिन भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि पहले तो 20-30 लोग, आजकल केवल हस्बैंड वाइफ दोनों हो आराम से, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सदा सुहागन, सदा साथ देने वाला, हम पुरुषार्थ करें ना करें, कैसे भी है वैसे जैसे भी है, बाबा हमको मदद करता है, लेकिन हमारे में उतनी ताकत होनी चाहिए ताकि हम उसका मदद ले सके। तो बाबा सदा सुहागिन हमको बनाता है, और बाबा हमको श्रृंगार भी करता है। कौन सा श्रृंगार? गुणों से, शक्तियों से, नहीं तो उसके बिना हम क्या है ओरिजिनली, हमारे हम में, मैं आत्मा में क्या गुण थे? कुछ तो कुछ भी नहीं थे। बाबा के बनने के बाद बाबा ने हमको अपना बनाया, और गुणों से, शक्तियों से बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं। प्रिसेप्टर, सदगति दाता, जिसको गति सदगति दाता कहते हैं, मुक्ति दाता भी कहते हैं, बाबा हमारा सतगुरु भी है। पाथ टू लिबरेशन, मुक्ति धाम में जाने का रास्ता हमको बताता है। और फ्रेंड, एज ए फ्रेंड, इंटॉक्सिकेटिंग रिलेशनशिप, जिससे हमको नशा चढ़ जाए ऐसा संबंध वो निभाता है। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो हमको आवश्यकता जब होने पर जो हमको सहायता के लिए आता है वही सच्चा फ्रेंड। ऐसे ही बाबा भी, परमात्मा भी, जब भी हमको उसकी जरूरत है उसका एक ही डिमांड है, सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा बस, मैं आपको मदद करने के लिए बंदाया हुआ हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है? सच्चे दिल से, वही कंडीशन है। अगर हम मन में कुछ रखे, किचड़ा रखे रहेंगे मेरा बाबा, तो बाबा मदद नहीं करेगा। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गए, मैंने तो एक ही प्रेजेंटेशन में लिखा था, जैसे कैसे परमात्मा के संबंधों को अलग अलग संबंधों में हम निभा सकते हैं, जैसे सोशल सर्विस में परमात्मा का, परमात्मा के साथ संबंध कैसे हेल्प हो सकता है, कोई हम मेंटली वर्क कर रहे हैं, कुछ फिजिकली वर्क कर रहे हैं, उस समय कैसे परमात्मा को हम साथ निभा सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब कोई शरीर छोड़ता है, हाउ टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड व्हेन सम नियर और डियर वन लीव्स फिजिकल कॉस्ट्यूम। जैसे लौकिक में बहुत दुख होता है जब कोई शरीर छोड़ता है, इतना दुख, इतने सालों के बाद भी उस व्यक्ति को याद करके रोते रहते रोते रहते, तो कैसे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के कैसे उसको साथ रखे, कोई शरीर जब छोड़ता है, कोई हमसे दूर चला जाता है, कैसे उस समय हम अपने आप को मजबूत करें, कैसे उस समय अपनी स्थिति को हम बना के रखें, उसके बारे में अगर प्रश्न आएगा भी तो अलग अलग अपने अनुभवों के आधार से, जैसे हमको मालूम है कि ये शरीर तो केवल एक कॉस्ट्यूम है जिसमें हम अभी पार्ट बजा रहे, तो जो भी शरीर छोड़ के गए जितने भी हमारे नजदीक वाले थे उनका हमारे साथ जो हिसाब किताब था चुक तो हो गया, इसीलिए वो हमको छोड़ के चले गए। और वो हमसे छोड़ के चले गए मतलब खाली जो कॉस्ट्यूम था ना वो ही छोड़ के गए हैं, आत्मा तो अविनाशी है अमर है, उस नॉलेज के आधार पे हम अपने स्थितियों को बना सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस दिया गया है। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे कॉमेंट्रीज बताया गया है कि फादर टीचर प्रिसेप्टर को कैसे हम अलग अलग संबंध में अनुभव कर सके। अगर क्लास जल्दी पूरा हो जाए, 5 मिनट मिले या 10 मिनट जितना भी मिले, तो इन कॉमेंट्रीज का प्रैक्टिस हम करेंगे। नेक्स्ट है कुछ गेम्स दिया है, जैसे जोक गेम है, ग्रुप ऑफ पीपल का कुछ गेम है, काउंटिंग राइम है, क्विक रिमेम्बरेंस है, स्नेक एंड लैडर है, ऐसे अलग अलग गेम्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मतलब कैसे इन गेम्स द्वारा, कहीं हम क्लास स्कूलों में कॉलेजेस में कराने जाते हैं तो उस समय कैसे हम इन गेम्स द्वारा उनको वैल्यूज के बारे में समझा सके, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ गेम्स दिया गया है। जैसे कि स्नेक एंड लैडर का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो लैडर जो है अच्छे गुणों के लिए एग्जाम्पल है, स्नेक जो है बैड क्वालिटीज जो है, बैड हमारे में जो वर्च्यूज है, दुर्ग अवगुण जो होते हैं उनके लिए एग्जाम्पल। अगर हमारे में अवगुण है तो हमको नीचे ले आएंगे, अगर हमारे में अच्छे गुण है तो हमको ऊपर ले जाएंगे, उसका एक एग्जाम्पल है। हाँ आइए, क्योंकि अभी गेम्स है तो एक गेम भी भाई साहब थोड़ा बताना चाहते हैं।
एक छोटा सा खेल हम खेलते हैं, उसमें आपको जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाना है। क्लियर? अलर्ट होकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आपको करना है। रेडी? पेट पे हाथ रखें, छाती पे हाथ रखें, गले पे हाथ रखें, गाल पे हाथ रखें, गाल गाल गाल। छोटे बच्चों को भी मालूम होता है गाल किसे कहा जाता है। आपने यहां पे फरीड पे क्यों रखा हाथ? क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली दो मैसेजेस मिल रहे थे, एक वर्बल दूसरा विजुअल। आपको फॉलो करना था वर्बल मैसेज को, आप किस मैसेज को फॉलो कर बैठे? विजुअल को, बिकॉज विजुअल इज सो स्ट्रांग। इसलिए कहा जाता है कथनी इंपॉर्टेंट है, करनी कुछ कथनी करनी इंपॉर्टेंट है, कथनी कुछ भी नहीं। कथनी कह रही है गाल पे हाथ रखो, गाल पे हाथ रखो, कथनी ये कह रही है, पर आप क्या देख रहे थे? करनी, करनी को फॉलो किया आपने। ओम शांति, तालियां।
ठीक है, ऐसे कुछ गेम्स का एग्जांपल दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो 3.5। जल्दी हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो 5:05 हो गया ऑलरेडी। एक जैसे भाई साहब का जल्दी पूरा हो गया ना, ऐसा कराएंगे तो क्योंकि अगर चैप्टर में गेम्स है तो आप बोलेंगे बेंजी ने तो गेम्स खिलवाए ना, इसीलिए खिला रहे हैं।
भाई जी दो चेयर चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। इसमें गेम में क्या है, कोई दो लोग आएंगे, कोई भी दो लोग आमने सामने रखना। कोई दो लोग आए प्लीज। एक और ओके okay, आप दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से बात करनी है, आप कुछ भी बात कर सकते हो, किसी चीज के भी बारे में बात कर सकते हो, क्लास के बारे में, या एक दूसरे को अगर यू वांट टू नो ईच अदर तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कन्वर्सेशन में मैं और मेरा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? ओके
okay? ये वैल्यू एजुकेशन में मिस कर रहे हैं आप, क्या क्या महसूस कर रहे हैं मैं जानना चाहती हूँ।
गेम से आउट हो गए, पहली बार नहीं, गेम से आउट हो गए आपने, मैं बोला ना मैं ये जानना चाहती हूँ। सॉरी,
आप कहाँ से हैं बहन जी?
परम धाम से।
और ये एमएससी का कोर्स आप क्यों करना चाह रहे हैं?
जिस वजह से आप करना चाह रहे हैं। By the way, आप किस वजह से करना चाहते हैं? I would like to know.
ये दुनिया सुहावनी है, आपका क्या अनुभव है?
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस दुनिया में।
क्योंकि मैं और मेरा काम को इतना आदत हो गया है, इतना आदत हो गया है, इतना हो गया है, बात मत पूछिए। तो नेक्स्ट है, चार टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, सेल्फ नॉलेज, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, क्रिएटिव एंड सपोर्टिव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड ट्रू लव। तो सेल्फ नॉलेज देखिए, ये जो अपने आप को जानने की जो बात है, ये हमारे लाइफ को बहुत अच्छी तरह से शेप करती है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, एक तो हमने अपने को आत्मा समझ लिया वो बात ठीक है, लेकिन मैं आत्मा हूँ और मेरे में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, जब ये मैं जानूंगी, इसको पहचानूंगी और उनको कार्य में लगाऊंगी, दे विल शेप माई लाइफ। अगर मेरा जीवन में कुछ मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कुछ साधना नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अचीवमेंट नहीं कर पा रही हूँ, उसका यही कारण है कि आई हैवंट रिकॉग्नाइज्ड माई क्वालिटीज एंड स्पेशलिटीज। तो इसीलिए सेल्फ नॉलेज मतलब आत्मा को समझ लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन उसके बाद और भी हजारों स्टेप्स है। तो अपने को जानना, गहराई में जानना जाएंगे तो दे विल हेल्प इन शेपिंग द लाइफ। लेकिन लोग क्या है, उनके फीचर्स जो है, उनके बॉडीली स्ट्रेंथ्स जो है, उनका बैकग्राउंड जो है, पोस्ट, पोजीशन, अथॉरिटी, वेल्थ, धर्म, उसके बारे में दे आर मोर कॉन्शियस। बट उन सभी से हटके, उन सभी से ऊपर उठ के जब कॉन्शियस, असली जो कॉन्शियस है, उसका जो अनुभव करने से ही जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है, अभी हमने जो गेम खेला उसके बारे में, ये आई एंड माइन, मैं और मेरा, इसी के जो बंधन है उसमें हम फंस गए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ऐसी हूं, मैं और मेरा मेरा मेरा। तो अगर मैं और मेरा हम यूज करेंगे ही, तो जिस कौन से अनुभव में करना है, मैं आत्मा और मेरा एक परमात्मा, मेरा एक बाबा। तो जब तक मैं और मेरा, जब तक किसी बंधन में हम फंसेंगे, तो हम पैरेलल लाइन में ही जाएंगे। पैरेलल लाइंस दे नेवर मीट, परपेंडिकुलर लाइन है तो दे विल मीट। पैरेलल लाइंस का मतलब है, जैसे ट्रेन्स की दो पटरी होती है ना, कैसे जाते हैं वो, कभी नहीं मिलेंगे आपस में। ऐसे ही मैं और मेरे के बंधन में हम रहेंगे, तो कभी भी हम मतलब किसी से मिलना जुलना, संबंध रखना, फ्रेंडशिप रखना, जीवन को एंजॉय करना, खुश रहना, शांति का अनुभव करना, दूसरों को वही खुशियों को बांटना, ये सब हम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं और मेरा जब आता है, वहां पर सेल्फिशनेस आ जाती, मैं ठीक रहूं, मेरे घर वाले ठीक रहे, बस बाकी किसी का कुछ भी हो जाए मुझे क्या है। तब मेरा लाइफ सबके साथ पैरेलल चलेगा, ना कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो हम मिल सकते, पैरेलल है तो हम कभी नहीं मिल सकते हैं। सेल्फ एम्बॉडीमेंट, अपने ही अपने को समझ के उस स्वरूप में रहना ही, दैट इज द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व मेरा जो ओरिजिनल क्या है, सेल्फ एम्बॉडीमेंट, अपने को आत्मा समझना और उस स्वरूप में रहना, वही रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। देखिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, पसंद ना पसंद, किसी किसी के प्रति हमारा बहुत प्यार होता है, किसी किसी के प्रति नफरत होती है। क्यों होता है? हिसाब किताब, क्योंकि देहाभिमान, देहाभिमान में जब हम आते हैं, कोई कोई हमको अच्छे लगते हैं और कोई कोई हमको अच्छे नहीं लगते, तो इन सब बंधनों से भी हमको बाहर निकलना है। क्योंकि ये शरीर, जिस शरीर को हम देखते हैं, जिस शरीर से हमको प्यार होता है, जिस शरीर से हमको नफरत आती है, वो केवल एक कपड़े जैसा है, एक मंदिर जैसा है, घर जैसा है। इट्स जस्ट एन आउटर कवर, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स जस्ट एन ऑर्गेनिक आउटफिट, बाकी तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट है डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। मैं न्यारा और प्यारा हूं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे दुनिया में क्या रो कुछ भी मालूम नहीं। कोई न्यारा और प्यारे का कुछ, कोई किसी को परिस्थिति है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं मैं न्यारा प्यारा हूं, उस समय न्यारा प्यारे हम हो जाते हैं। लेकिन न्यारा प्यारा किससे होना है, न्यारा प्यारा किससे हमको ना होना है, ये भी नॉलेज चाहिए। कुछ सेवा चल रही है सेंटर पे कहीं पर, नहीं अभी मैं न्यारा प्यारा हूं, अभी मैं डिटैच्ड हूं, अभी मुझे योग करना है, वो न्यारा प्यारा की निशानी है नहीं। व्यक्तियों से, वस्तुओं से, शरीर से हमको न्यारा प्यारा रहना है, बाकी न्यारा प्यारा होके सबसे हमको मिलजुलना है, सबके साथ हमको सेवा भी करनी है। दुनिया में आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो न्यारा प्यारा नहीं है। कहीं का सभी के साथ रह के, सभी परिस्थितियों के बीच रह के, सभी के संबंध को निभाते हुए, सबके साथ सेवा करते हुए भी जो रहते हैं, वही न्यारा प्यारा। ऐसे नहीं कि दूर कहीं जाके बैठेंगे और बोलेंगे न्यारा प्यारा, वो दैट इज नॉट द रियल डिटैचमेंट। रियल डिटैचमेंट वही है सबके बीच में रहते हुए भी, कमल पुष्प कीचड़ के बीच में रहते हुए भी डिटैच्ड। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छी जगह पे पलते पलते बोले मैं डिटैच्ड हूं, दैट इज नॉट द रियल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज नॉट टू से दैट आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, कहना कोई नहरा और प्यार का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, उससे मुझे अपने को थोड़ा गैप रखना है बस, दैट इज डिटैचमेंट। पूरा भी उनके साथ हमारा सारा संबंध भी ना हो, पूरा डिटैचमेंट भी ना हो, वहां पर थोड़ा हमको स्पेस ऑफ टाइम, वहां पर थोड़ा हमको गैप रखना है, दैट इज डिटैचमेंट एंड लविंग। और डिटैच्ड जो ऑब्जर्वर जो होता है, साक्षी दृष्टा का प्रैक्टिस जो करता है, वह बहुत सुंदर से यहाँ पे बताया गया है कि ही विल टेक प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। बुराई में भी अच्छाई को देखना, कल का वरदान किसी को अगर याद हो, बाबा ने क्या बोला था, दुख में भी सुख का अनुभव करो। हाँ, वो तभी हम पुण्यात्मा बन सकते हैं, कल की मुरली में था। तो प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी, कुछ प्रॉब्लम आई है, ये मेरे लिए सौगात लाई है, ये मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आई है, वो अनुभव हम कर सकते जब हम सचमुच न्यारे प्यारे रहेंगे। इस दुनिया में कुछ डेंजरस प्लेस है, कोई बात है, तो एक एडवेंचरस प्लेग्राउंड हम उनको उसको समझना है। कोई भी बात है, उसको जो नेगेटिव आ रही है, उसको पॉजिटिव लेने में हमको हेल्प मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम डिटैच रहेंगे। तो नेक्स्ट है क्रिएटिव एंड सपोर्टिव। मतलब जितना हो सके हमको क्रिएटिव, कोई भी बात है, कुछ कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, हर एक बात में अगर हम क्रिएटिव करते जाएंगे तो अलग अलग अनुभव हमको होते जाएंगे। नेक्स्ट है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता में फर्स्ट स्टेप कौन सी है? जो मैं हूं, जैसी हूं, जो पार्ट में बजा रही हूं, दैट इज 100% करेक्ट। आई शुड एक्सेप्ट माइसेल्फ फर्स्ट। मुझे पहले अपने को स्वीकार करना है। आई हैव टू एक्सेप्ट माइसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि देखिए, जीवन जो है बहुत सुंदर सा तोहफा है, और वर्तमान में, प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट, वर्तमान में जो हम जीते हैं वो हमारे लिए गिफ्ट है, ना कि हमको भूतकाल की बातों को सोचना है, ना कि भविष्य की बातों के बारे में चिंता करनी है। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट। इसीलिए जो वर्तमान समय में मेरे सामने है उसको मुझे स्वीकार करना है और आगे बढ़ते जाना है। और जब आप अपने मिस्टेक्स, पहला है अपने को एक्सेप्ट किया, दूसरा स्टेप है अपने गलतियों को भी मुझे एक्सेप्ट करना है, तभी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि जब हम मिस्टेक करते हैं उससे हमको अनुभव मिलता जाता है। अगर मैं उस मिस्टेक को स्वीकार नहीं किया, उससे सीखा नहीं, तो अगेन वही मिस्टेक हो सकता है। तो इसीलिए अगर मैं अपने मिस्टेक को स्वीकार करूंगी देन ओनली आई विल बी सक्सेसफुल। तो हाँ, अगर मैं मिस्टेक कुछ किया और उसको स्वीकार करने में रेफ्यूज किया, नहीं ये मिस्टेक मैंने नहीं किया, तो हम अपने को दो बार हर्ट कर रहे हैं। पहली बार जब हम मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरी बार जब हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गलती तो किया, उसको स्वीकार करके उससे हमको शिक्षा लेकर के उससे सीख के वही मिस्टेक दोबारा ना हो, इसका हमको एफर्ट्स करना है। लेकिन टू टाइम्स आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड द मिस्टेक, सेकेंड टाइम व्हेन आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। जब मैंने गलती किया वो पहली बार ही मैंने अपने को हर्ट किया, जब गलती को स्वीकार ना किया वो सेकेंड टाइम मैंने अपने को हर्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है फॉरगिवनेस। नॉट ओनली फॉरगिव, सेकेंड थिंग इज वी शुड ऑल्सो फॉरगेट। चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया, उसको याद रखेंगे तो वो व्यक्ति जब हमारे सामने आएंगे वही बातें याद आएंगी। इसीलिए फॉरगिव के साथ साथ फॉरगेट भी बहुत जरूरी है। कि किसी ने भी हमारे लिए तकलीफ लाया हो, हमारे सामने परिस्थिति लाया हो, हमारे सामने विघ्न डाले हो, उन सबको आज हमको क्या करना है? पक्का करेंगे सभी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे भी इंक्लूड करके आज हमें कोशिश करें। ऐसा यहां नहीं करना है, फॉरगिव के साथ साथ फॉरगेट भी करना है, भूल भी जाना है कि उन्होंने हमको क्या किया था। ठीक है, कल तक ये ट्राई करेंगे, जिसने हमारे लिए कुछ भी किया हो उसको हम याद नहीं करेंगे। हो सकता है, ट्राई करेंगे, कल रिजल्ट हम देखेंगे कि वो बात हमको याद आई या ना आई। देखिए, हमारे में शक्ति, ज्ञान और शक्ति की कमी जब होती है तो हम वीक हो जाते हैं और उन बातें हमको याद आती रहती है। और हमेशा जो हमको इंसल्ट करते हैं, जो हमको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ही अपने वेल विशर समझना है। बहन जी ये तो नहीं हो सकता है, ऐसा है? जो हमको क्रिटिसाइज कर रहे, इंसल्ट कर रहे, उनको ही अपना फ्रेंड समझना है, पॉसिबल है? हाँ या ना? डिफिकल्ट है, पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। क्योंकि अपने मन को हमको इतना स्ट्रांग और बेहद का रहम होना चाहिए उस आत्मा के प्रति, तब ही हम उनको वेल विशर समझ सकते हैं। और अपने, देखिए हम अपने ही थेरेपिस्ट बन सकते हैं, अपने ही डॉक्टर बन सकते हैं। कब? जब हम अपने कमी कमजोरियों को पहचानेंगे। शरीर के लिए तो हमको कहीं दर्द है, बुखार है, वो डॉक्टर को बताएंगे तो वो ट्रीटमेंट दे सकते, लेकिन मन में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या चल रहा है वो किसको मालूम है? ठीक है, बाबा ऊपर वाला कहते हैं मैं भी इन सब काम के लिए नहीं बैठा हूं। हम, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है केवल मुझे ही मालूम है, दुनिया में और किसी को भी मालूम नहीं है। तो जब मैं उसको पहचानूंगी क्या हो रहा है, पहले कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है, क्या क्या मेरे में नेगेटिव बातें हैं, जब उसको मैं पहचानूंगी, उसके लिए ट्रीटमेंट दूंगी, तब मैं खुद अपना डॉक्टर अथवा थेरेपिस्ट बन सकती हूं। जो भी पिछले पुरानी बातें हुई है सबको फुल स्टॉप डाल के अपनी पुरानी वृत्ति, पुरानी बातें जो भी है उनको भी, जिसने भी दुख दिया हो, परिस्थिति लाई हो, कुछ भी हुआ हो, उन सबको भूल के अभी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, अगर कोई हमको कोई भी मोमेंट में सहाय नहीं किया है, सहयोग नहीं दिया है, उनको थैंक्स देना है। क्यों? किसी से आपने कुछ सहयोग पूछा, उन्होंने नहीं दिया, क्यों उनको थैंक्स देना है? क्योंकि उन्होंने नहीं किया इसीलिए मैं खुद करना सीख गई। वही मुझे सहयोग देते रहेंगे तो मैं कब सीखूंगी? इसीलिए से थैंक्स टू दोज हु डिडंट हेल्प मी टू डू अ टास्क एज आई लर्न टू डू इट माई सेल्फ। मैं अपने आप इसको करना सीख गई इसीलिए उनको थैंक्स देना है। नेक्स्ट है ट्रू लव, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार माना क्या है? जहां जिस प्यार में बैलेंस हो, हार्मनी विद द सेल्फ, गॉड एंड अवर फेलो थिंग्स, अपने आप से, परमात्मा से, जिसके साथ हम रहते हैं उनके साथ सच्चा प्यार हो और बैलेंस हो, उसी को ही ट्रू लव कहा जाता है। प्यार माना ऐसे नहीं कि उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं लेकिन फिर भी उसको मुझे प्यार है, ऐसे नहीं हो सकता है। कोई भी आत्मा है उनमें कोई कमी है, कमजोरी है, आई शुड एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, केयरिंग, शेयरिंग, फ्रीडम, गिविंग एंड फॉरगिविंग, तो ये सब है। न्यारे और प्यारे का संबंध है तब ही सच्चा प्यार हो सकता है। जब मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करके अपने को प्यार करूंगी, अपने आप को मैं प्यार दूंगी, तब ही मैं दूसरों को भी प्यार दे सकती हूँ। वैसे ही परमात्मा का प्यार भी अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है, सेल्फलेस है। कोई भी देहधारी हमको प्यार करता है, कभी कभी लगता है ना कोई हमसे बहुत प्यार से कभी अचानक बात करेंगे तो क्या सोचते हैं हम, क्या सोचेंगे, कुछ काम है इसीलिए इतना प्यार से आज मक्खन लगा रहे ऐसा लग रहा है। लेकिन परमात्मा से जब बाबा कितना भी प्यार से बोले, कितना भी प्यार से बातें करे, हमको वो संकल्प नहीं आते, क्योंकि हिज लव इज सेल्फलेस, कोई उसमें स्वार्थ नहीं है। वो तो एक स्वार्थ तो है क्योंकि उनको स्वर्ग स्थापन करना है ना, हम रेडी होंगे तो ही बाबा स्वर्ग स्थापन करेगा, बाकी तो कोई सेल्फिशनेस नहीं है, अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है, ही इज द ओशियन ऑफ लव। नहीं, और एक टॉपिक है शायद मिस हो गया है, मोस्ट कॉमन रिलेशनल एरर्स, क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। पहला है, हम अपने खुशी को दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है प्रेजेंटेशन में, बुक में देखे बता रही हूँ। हम अगर दूसरे मेरे से अच्छी तरह बात करेंगे, सहयोग देंगे तो मैं खुश, अगर दूसरे मेरे से अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे तो मैं ना खुश। हम क्या करते हैं, अपनी खुशी को दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी हमको दुखानुभव होता है। और सेकेंड पॉइंट है, ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, आप ये नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, आप वैसा नहीं करो, दूसरों को हम कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं, तभी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती है। और एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, दूसरों से जब हम एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि वो मेरे लिए हेल्प करे, मेरे लिए कुछ करे, मेरे से बात करे, मेरा सुने, कुछ भी, अनेक प्रकार के हमारे में एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जब इन एक्सपेक्टेशंस को हम रखते हैं तब भी हमको दुख का अनुभव होता है। लिमिट लव टू फिजिकल नीड, मतलब जब कोई भी व्यक्ति लौकिक में जैसे शारीरिक प्यार के लिए संबंध रखते हैं, उस समय भी में उनको दुख ही मिलता है, कोई ना कोई बात में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, दुख का ही अनुभव होता है। और रिलेशनल एरर्स तब भी होते हैं व्हेन वी क्रिटिसाइज अदर्स, जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। और हमको ये भी डर रहता है कि मन में वो मैंने कुछ किया, मैंने कुछ काम किया, कुछ सेवा की, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, पता नहीं वो कुछ कमेंट ना पास कर दे, पता नहीं कुछ नेगेटिव बातें ना बोल दे, ये भी हमारे मन में डर रहता है। जब ये बातें भी मन में आती है तब भी रिलेशनल एरर्स आते हैं। हाँ, और अज्यूमिंग द इंटेंशन ऑफ अदर्स, वो क्या सोचेंगे उसको मैं अज्यूम करके उस हिसाब से चलना, हाँ उनको शायद अच्छा लगेगा इसीलिए मैं काम कर रही हूँ, उनको अच्छा लगे ना लगे हमको कैसे मालूम है। जब वेन वी अज्यूम द इंटेंशन ऑफ अदर्स, दूसरों को भी इंटेंशंस को जब हम अज्यूम करते हैं तब भी रिलेशनल एरर्स आ सकती है। तो ये यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिया गया, मोस्ट कॉमन रिलेशनल एरर्स, क्यों संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, एरर्स आ सकती है, 7 पॉइंट्स दिया गया। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति।